नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार प्लस टू उच्च विद्यालय नगर नौसा में इतिहास शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बच्चों, आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर महात्मा गांधी के बारे में। 1915 से 1948 तक जो भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाने जाते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अमूल्य योगदान है। जिस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन का, इटली के एकीकरण में गरिबाल्डी का, वियतनाम में हो ची मिन का नाम राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार महात्मा गांधी का नाम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हें भारतीय पिता, फादर ऑफ द इंडियन नेशन कहा जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक चरण आरंभ और समाप्त हुआ। 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में उनकी प्रमुख भूमिका रही। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में दो नए अस्त्रों, सत्याग्रह और अहिंसा का उपयोग किया। उनके निर्देशन में चला राष्ट्रीय आंदोलन का चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन राजकोट रियासत में चला। तत्पश्चात बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका में गए। वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1891 में वे स्वदेश लौटे। 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका पुनः गए। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। जिस समय गांधी जी भारत वापस लौटे, उस समय विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को अपना समर्थन दिया और उनकी सेवाओं के बदले उन्हें सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनके गतिविधियों का केंद्र बना। गांधी जी के राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सुझाव दिया कि एक वर्ष तक तुम संपूर्ण भारत की यात्रा करें, जिससे इस देश की और यहाँ के निवासियों को सही ढंग से समझ सके। गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह 1916 में हुआ। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जैसे गणमान्य लोग उपस्थित थे। 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए और इस सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना बढ़ी। लखनऊ में ही बिहार के चंपारण के एक संपन्न किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। उन्होंने किसानों पर निलहों द्वारा किए गए अत्याचार और किसानों की दयनीय दशा से गांधी जी को परिचित कराकर उन्हें चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। उनके निमंत्रण पर गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जी बी कृपलानी और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 1917 में गांधी जी चंपारण आए और किसानों की समस्या का समाधान किए। वहां बहुत दिनों से चली आ रही तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त किए। गांधी जी ने चंपारण के अतिरिक्त 1918 में गुजरात में खेरा के किसानों को संगठित कर उन्हें सत्याग्रह करने के लिए संगठित किया। इसी आंदोलन के दौरान विठल भाई और वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए और खेरा में गांधी ने दूसरी बार सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह किसानों को राहत दें। 1918 में ही गांधी जी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के खिलाफ उनके वेतन बढ़ोतरी के समस्या के समाधान के लिए अहमदाबाद आए और उनकी समस्या का समाधान किए। तत्पश्चात 1919 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया, गांधी जी ने भी इस एक्ट को पोस्ट डेटेड चेक के साथ इस कानून का विरोध किए। और उन्होंने कहा, कानून में विरोध में कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी निंदा गांधी जी ने किया और 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब बहुत दिन तक भारतीयों को ठगा नहीं जा सकता था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत निर्वात वर्तमान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने थाना में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। स्वयं गांधी जी इस हिंसक घटना से दुखी हुए थे और गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। 1924 में गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तत्पश्चात 1930 में गांधी जी अपने 74 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए निकल पड़े और 6 अप्रैल को दांडी में गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। तत्पश्चात गांधी जी 1930 में ही 100 विनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए और अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिए। अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधी जी को द्वितीय गोल सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया गया। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे तो उन्होंने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी को ऐसा लगा कि जब हमारे देश का नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर कर ही रहे हैं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है और गांधी जी वापस भारत आ गए। 5 मार्च 1931 को गांधी के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद गांधी जी 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर के साथ एक समझौता किए जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के द्वारा अंतिम जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए और गांधी जी कहे कि हम भारत को स्वतंत्र करा के रहेंगे, लेकिन आंदोलन के दिन ही अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए और 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में आ गए। और अंग्रेजों को जब ऐसा लगने लगा कि यह आंदोलन अब मेरे बस की बात नहीं है तो अंग्रेजों ने क्रूरता पूर्वक भारत छोड़ो आंदोलन को दमन कर दिया और इस तरह गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से घबरा कर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया और इस तरह भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त हुआ और 30 जनवरी 1948 को आरएसएस के संस्थापक सदस्य नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारकर हत्या कर दी और इस तरह इतिहासकारों द्वारा यह बात कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान महत्वपूर्ण था।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।